कुछ 2-3 हफ्ते गुजर गए थे इस बात को। जाने से पहले निशांत और अर्पिता की मुलाकात हो गई थी और बात तो सुबह शाम होने लगी थी। निशांत तो पहले से उसे चाहता था और अब अर्पिता को भी उसका साथ भाने लगा था। राधिका और माधव की बातचीत भी फिर से शुरू हो गई थी। अर्पिता के रिश्ते के लिए वो भी खुश था। अनुपमा जी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। आशुतोष जी अर्पिता की चिंता से मुक्त हो गए थे पर राधिका के लिए आज भी परेशान थे। शाम का वक्त था, राधिका शाम की चाय बना रही थी। अर्पिता मैडम उसको बातों में लगाए मट्ठी और नमकीन चट करने में लगी थी। आशुतोष जी बाहर बैठे देश दुनिया की खबर सुन रहे थे। डोरबेल बजी तो राधिका ने उबलते दूध को गैस पर से उतारते हुए मसरूफियत से अर्पिता से कहा, अप्पू जाकर देख तो कौन आया है इस वक्त। अप्पू ने सर हिलाया और मुट्ठी में नमकीन भरे मुंह चलाती हुई बाहर चली गई। गेट पर पहुंचकर उसने बची नमकीन अपने मुंह में भरी और हाथ झाड़ते हुए दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े जाने अनजाने चेहरों पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ देर बाद वो वापस हैरान परेशान सी रसोई में लौटी। कौन आया था इस वक्त, राधिका ने चाय छानते हुए सवाल किया। अर्पिता के कानों में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी, वो चौंकते हुए होश में लौटी, चेहरे के भाव भी ज़रा बदले। आपकी सासू माँ आई हैं। क्या बकवास कर रही हो, राधिका ने पलटकर उसके सर पर चपत लगाते हुए उसे फटकार दिया। अर्पिता ने अपनी हथेली से अपने सर को सहलाया और बुरा सा मुंह बनाए खींचते हुए बोली, बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। अगर विश्वास नहीं तो जाओ जाकर देखो, आपकी सासू माँ आई हैं, वो भी पूरी बारात लेकर। लगता है आज ही आपको विदा करवा कर ले जाएंगी। अर्पिता की बेसर पैर की बातें राधिका को कुछ खास समझ नहीं आई, पर इतना समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रही। सासू माँ शब्द उसके कानों में गूंजा, आंखों के आगे ललिता जी का चेहरा उभर आया। राधिका हड़बड़ाई हुई सी बाहर को भागी, पर जैसे ही नज़र बाहर बैठे लोगों पर पड़ी, उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और आंखों की पुतलियां अविश्वास से फैल गईं। उसने तो सोचा था शायद ललिता जी आई हैं, पर बाहर अनुपमा जी आशुतोष जी के साथ बैठी थीं और उनके बीच होती बातों की आवाज़ साफ साफ उसके कानों में पड़ रही थी। माफ़ी चाहेंगे भाई साहब, ऐसे बिना बताए ही आ गए, पर पहले ही बहुत देर कर दी थी और देर नहीं करना चाहते थे। जो बातें करनी थी वो फ़ोन पर हो भी नहीं सकती थी, तो आपको तकलीफ़ देने यहाँ चले आए। अरे कोई बात नहीं बहन जी, तकलीफ़ कैसी, हम तो बस थोड़ा हैरान थे अचानक आपको यहाँ देखकर। आप बताइए कैसे आना हुआ आपका यहाँ हमारी चौखट पर। आशुतोष जी का सहज व्यवहार देखकर अनुपमा जी के मन पछतावे की अग्नि में जलने लगा और उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। हम यहाँ सालों पहले हमने आपकी बेटी को ठुकराकर जो गलती की थी, उसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। आपकी बेटी तो हीरा थी, बस हम ही उन्हें पहचानने में धोखा खा गए। उनके रंग रूप को उनके गुणों से ज्यादा अहमियत दी, हीरे की चकाचौंध में खरे सोने को पहचान न सके। किस्मत खुद चलकर हमारे द्वारे आई, पर हमने अपनी मूर्खता में उसे ठुकराकर खुद अपनी किस्मत को लात मार दी। पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। जो पहले हुआ उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आशुतोष जी जहाँ आज उनकी बातें सुनकर हैरान थे, वहीं उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उस वक्त राधिका के ठुकराए जाने पर बहुत दुख हुआ था उन्हें, पर आज अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर उनका मन हर्षित हो गया था। माफ़ी मांगने वाली तो इसमें कोई बात नहीं बहन जी, शादी ब्याह में ये सब तो होता ही रहता है। आपको जैसी बहू की तलाश थी, हमारी बेटी उन मापदंडों पर पूरी नहीं उतर सकी, इसमें ना आपका दोष था ना हमारा, शायद किस्मत में यही लिखा था। भाई साहब, अगर आपने बीवी बातों और हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ़ कर दिया, अब आपके मन में हमारे प्रति कोई शिकायत और नाराज़गी नहीं, तो हम कुछ मांगे आपसे, निराश तो नहीं करेंगे हमें। हमारे पास देने के लिए क्या है जो आप मांगना चाहती हैं। हम यहाँ आपसे आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मांगने आए हैं। आशुतोष जी उनकी ये बात सुनकर ज़रा हैरान थे और आगे जो उन्होंने कहा उसे सुनकर तो स्तब्ध रह गए। सालों पहले हमारे परिवारों के बीच रिश्ते की बात हुई थी, पर रिश्ता ना हो सका। हमने आपकी बेटी को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो हमारे बेटे के काबिल नहीं है, पर अब हमें अपनी भूल का एहसास है और हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आज हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आशुतोष जी कुछ कह न सके, बस खामोश से उन्हें हैरान परेशान से देखते रह गए। राधिका के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। पथराई आंखें बेयकीनी से उन्हें देखती रहीं। भाभी, सबके बीच बैठे बोर होती शिखा की नज़र जब राधिका पर गई तो अनायास ही उसने चहकते हुए उसे पुकारा, जिससे बाकी सबका ध्यान भी उस पर चला गया। राधिका भी सदमे की स्थिति से उभरी और हड़बड़ाहट में वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अनुपमा जी की आवाज़ सुनकर उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। राधिका, रुक जाओ बेटा, हमें आपसे भी बात करनी है। राधिका का दिल कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, कहीं लुप्त हो जाए, ये सब एक ख्वाब हो और नींद खुलते ही सब गायब हो जाए। पर अफसोस कि ना ये सब ख्वाब था और ना ही वो यहाँ से कहीं जा सकती थी। अभी वो खुद को अनुपमा जी का सामना करने के लिए तैयार भी नहीं कर सकी थी कि अनुपमा जी उसके पास चली आई। हम आपको पहचानने में गलती कर गए बेटा,
समझ ही नहीं सकी कि आप जैसी बहू पाना हमारा सौभाग्य है। अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ हमें और अब हम अपनी उस भूल को सुधारना चाहते हैं। सालों पहले हमने ही आपको ये कहकर ठुकराया था कि आप हमारे बेटे की पत्नी और हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं। आज हम ही आपसे कह रहे हैं कि हम गलत थे। हमने गलत लड़की चुनकर अपने ही बेटे की जिंदगी मुश्किलों और संघर्षों से भर दी, उनसे उनकी खुशियां छीन ली। उनके लिए आप हमेशा से काबिल जीवन साथी थी। हमें आपसे अच्छी बहू कहीं नहीं मिल सकती थी। ठोकर खाकर अकलाई है हमें और अब हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारी भूल को माफ कर दीजिए। हमारे बेटे से शादी करके बहू बनकर हमारे घर परिवार को संभाल लीजिए। माधव और अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका दीजिए। उन्हें और आपको दोनों को खुश रहने का हक है, पर हमारे कारण आप दोनों ही अब तक दुख सहते रहे। हम बस आपको बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं, अपने बेटे को उनकी खुशियां लौटाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। बोलिए राधिका, क्या आप हमारी ये इच्छा पूरी करेंगी? अनुपमा जी बोल रही थी और राधिका सर झुकाए खड़ी बस खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में, पर शब्द मौन थे। उसके दिल का हाल सिर्फ वही समझ रही थी। जिसने कभी उसे ठुकराया था, आज अपनाने को तैयार खड़ी थी। जिसे कभी अपना बनाना चाहा था, आज फिर उसका रिश्ता आया था उसके लिए, पर मजबूरी ऐसी कि वो इस बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। मन अजीब सा हो रहा था और जाने किन एहसासों तहत उसकी आंखें भीग गई थीं। राधिका ने अपनी भीगी पलकें आशुतोष जी की ओर उठाई। उसकी बेचैन निगाहों में अजीब सा दर्द और बेबसी झलक रही थी। लब अब भी मौन थे, पर शायद आशुतोष जी उसके मन की व्यथा और दिल का हाल समझ गए थे। बहन जी, आप हमारे घर आईं, हमारी बेटी का हाथ मांगा, हम आपके आभारी हैं, पर हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे अचानक आपका आना हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं सके, और राधिका तो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तो हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। कुछ वक्त दीजिए हमें, हम राधिका से बात करके आपको उनका जवाब दे देंगे। जी, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अनुपमा जी भी शायद स्थिति समझ रही थी, इसलिए उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। राधिका ने एक बार फिर अपनी पलकें झुका ली। आंटी, घर आई हैं तो चाय नाश्ता करके जाइएगा।
इतना कहकर उसने अर्पिता को सबको चाय देने को कहा और खुद बिना एक पल गवाए लंबे लंबे डग भरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। राधिका कमरे में तो आ गई थी, पर अब भी उसे अपना दम घुटता हुआ सा महसूस हो रहा था। मन अजीब सा हो रहा था। रह रहकर अनुपमा जी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और वो बेचैन होती रही। कहाँ सोचा था उसने कि कभी ये दिन भी आएगा, अनुपमा जी कभी ऐसे दोबारा उसके घर आएंगी माधव के लिए उसका हाथ मांगने। ये तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हाँ, एक वक्त था जब माधव उसका ख्वाब था और उसकी आंखों में उसके सपने सजा करते थे, पर जब हकीकत से सामना हुआ था तो सारे सपने टूटकर बिखर गए। उस वक्त उन ख्वाबों के साथ वो भी टूटी थी और जिंदगी में पहली बार खुद में कमियां नजर आई थीं उसे। उसने तो मान लिया था, खुद को समझा लिया था कि वो माधव के काबिल ही नहीं, और अब जब सब कुछ बदल गया है तो जिंदगी के इस मोड़ पर आकर ये सब, राधिका कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। वो इस वक्त कैसा महसूस कर रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। राधिका कुछ देर बेचैनी से यहां से वहां टहलती रही, खुद को समझाती रही, नीचे हुई बात दोहराती रही। जब कुछ समझ न आया तो उसने अपना फ़ोन उठाया और कांपती उंगलियों से माधव का नंबर डायल कर दिया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, उसकी घबराहट और उलझने भी बढ़ती जा रही थी। टू बी कंटिन्यूड।